परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम सत्य वचन में हम अध्ययन कर रहे हैं लैव व्यवस्था नामक पुस्तक की, जिसमें धार्मिक पर्वों, अनुष्ठानों, शुद्धता की विधियां, नैतिक आचरणों, सातवें वर्ष और जुबली वर्ष से संबंधित नियमों का वर्णन है। इससे पहले कि हम इसका अध्ययन आरंभ करें, आइए सुनते हैं एक गीत।
कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआस लोगों हिम्मत है यीशु।
कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआस लोगों हिम्मत है यीशु।
तो गालो यीशु नाम बन जाएंगे काम।
तो गालो यीशु
गालो ये सुना बन जाएंगे काम।
तू गालो ये सुना बन जाएंगे काम।
बोल यीशु मसीह की जय। काम न आए इस दुनिया में सब हर जाए।
दुनिया किसी के काम न आए इस दुनिया में सब हर जाए।
दुनिया किसी के काम न आए किस दुनिया में सब हर जाए।
दुनिया किसी के काम आए इस दुनिया में सब हर जाए।
वो पकड़े जो हाथ छोड़ेगा न साथ।
वो पकड़े जो
प्रिय मित्र, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज भी प्रभु के वचन से सीखने के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं, है या नहीं। मैं आप सभी श्रोताओं का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके हमारे उन नए श्रोताओं का जो आज पहली बार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आज के अध्ययन के द्वारा आप अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने स्त्री और पुरुष के स्राव के समय की अशुद्धता और उसके उपरांत चढ़ावा अर्थात बलिदान, प्रायश्चित का महान दिन जो एक पुरोहित के माध्यम से यीशु मसीह को दर्शाता है या चित्रित करता है, हमने इन विषयों को देखा था। आज हम अपने अध्ययन को लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 16 अध्याय और उसके 5 पद से आरंभ करेंगे। तो मित्रों, आइए हम इस पुस्तक के 16 अध्याय और उसके 5 और 6 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर वह इसराइलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करें। मित्रों, यह हारून के अंतिम और व्यक्तिगत तैयारी को दिखाता है जो इस महत्वपूर्ण दिन के लिए है। हारून ने अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए और हो सकता है कि उसने पूरे लेवीय जाति के लिए पाप बलि चढ़ाया। प्रायश्चित के महान दिन के इस भाग का यीशु मसीह के जीवन और कार्यों में कोई भी प्रतिरूप नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें कोई भी पाप नहीं था। वह पाप रहित था, वह अपने लिए नहीं मरा, परंतु वह हमारे लिए अर्थात आपके लिए और मेरे लिए पाप बना। उसने अपने लिए कभी भी कोई बलिदान नहीं चढ़ाया। जब वह छोटा ही था तो मंदिर में कबूतर बलिदान के लिए ले गए, लेकिन वह भी मरियम के शुद्धिकरण के लिए था जो उसकी माता थी, मसीह के लिए नहीं। यह सब उसे याद दिलाने के लिए था कि वह एक पापिन है। यीशु मसीह के लिए बलिदान या अर्पण चढ़ाने के विषय में कोई भी विवरण नहीं है, परंतु हारून के लिए आवश्यक था कि वह सबसे पहले अपने लिए बलिदान चढ़ाए और तब जाकर वह लोगों के लिए बलिदान चढ़ा सकता था। आइए हम सबसे पहले देखते हैं स्थान की तैयारी। लय व्यवस्था की पुस्तक 16 अध्याय उसके 7 से 14 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे, और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो, और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवता खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा समीप ले आए और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे, और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है उस पर से जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को फूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पात्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। तब वह बछड़े के लोहू में से कुछ लेकर पूरब की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के, और फिर उस लोहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि 2 बकरे हैं, एक पाप बलि के लिए नियुक्त किया गया था। प्रत्येक पाप से छुटकारे को अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। एक को पाप बलि के रूप में चढ़ाया गया और दूसरे को जंगल में ले जाया गया। जिस बकरे को जंगल में ले जाया जाता था उसे बलि का बकरा कहा जाता था। इसका इब्रानी शब्द लो अजाजेल है। इसके अर्थ को लेकर कुछ संदेह है। मुख्यतः यह शब्द बकरे के लिए लागू होता है और उसके जंगल में के स्थान के लिए भी लागू होता है। 70 लोगों ने, जैसे लूथर, किलोग और एंड्रू बोनार के पूर्ण विचार से इसका अर्थ एक पूर्ण और संपूर्ण स्थानांतरण है। श्री एंडरसेम इसके अर्थ को इस प्रकार बताते हैं, पूर्ण रूप से दूर चले जाना। मित्रों, निश्चित रूप में यह पाप बलि का ही एक भाग है। एक चिट्ठी एक बकरे के नाम की निकलती है जिसे दूर ले जाकर छोड़ा जाता है, और एक उस बकरे के नाम निकलती है जिसे बलि किया जाता है। इससे पहले कि बकरों के साथ कुछ किया जाए, हारून को बैल के लहू को लेकर महापवित्र स्थान में जाना पड़ता था और अपने परिवार के लिए बलि चढ़ाना पड़ता था। इसलिए ऐसा कहना एकदम सही नहीं होगा कि महापुरोहित साल में सिर्फ एक ही बार अंदर प्रवेश करता था। वह साल में एक ही दिन अंदर प्रवेश करता था, परंतु वह उस दिन 2 बार अंदर जाता था। मित्रों, पीतल की वेदी बाहरी परिसर में थी। उसके पाप के बलिदान के लिए बैल किसी अन्य पापी बलि की तरह मारा अथवा काटा जा सकता था। बलिदान के आखिरी में कुछ नई चीजें जोड़ी गई हैं। महापवित्र स्थान के मार्ग में, जैसे कि उसने धोने के स्थान को पार किया, तो मुझे भरोसा है कि उसने अपने पैर और हाथ अवश्य धोए होंगे, और उसके बाद पवित्र स्थान में सुनहरी वेदी के पास धूपदान में जलते कोयले के अंगारे लेकर और हाथ में सुगंधित लोबान को लेकर धूपदान में जलते हुए कोयले पर रखता था। जब वह महापवित्र स्थान के पर्दे को पार करता था तो महापवित्र स्थान बादल के धुएं से भर जाता था। संदूक दया का सिंहासन महापवित्र स्थान में था। उसे बैल के लोहू को, जिसे वो अपने साथ में लाया है, ले जाना पड़ता था और उसमें उंगली डुबाकर दया के सिंहासन पर 7 बार छिड़कना पड़ता था। मित्र, लोहू संदूक के सबसे ऊपरे हिस्से को दया का सिंहासन बनाता था। 7 बार एक पूर्ण और सही प्रायश्चित को दर्शाता है। मित्रों, मैं विश्वास करता हूं कि यह दिन महापुरोहित के लिए एक विस्मयकारी दिन होता था। उसे सारी विधि को बिल्कुल सही और बड़ी सावधानी के साथ परमेश्वर के सामने करना पड़ता था। थोड़ी सी भूल या गलती का मतलब मृत्यु थी। संभवतः इस विधि को करने से पहले उसने कई बार अभ्यास किया होगा। जहां तक हम जानते हैं कि कोई भी महापुरोहित उस महापवित्र स्थान में नहीं मरा। केवल 2 व्यक्ति मरे थे, वे नादाब और अबीहू थे। मित्रों, यीशु मसीह को हमारे लिए क्रूस पर पाप बनाया गया। यह तंबू में की पीतल की वेदी का प्रतिरूप है। फिर हमारे महापुरोहित के रूप में उसने स्वर्ग में प्रवेश करके अपने लहू को हमारे पापों के लिए चढ़ाया। अब परमेश्वर का सिंहासन हमारे लिए एक दया का सिंहासन है। ये सारी बातें हमें स्पष्ट रूप से इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 9 और 10 में सिखाई गई है। जबकि हारून डरते और कांपते हुए गया और हमें इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय उसके 16 पद के अनुसार हियाव बांधकर आने के लिए कहा गया है, जहां पर वह ठहरने की हिम्मत नहीं कर सका और वह साल में सिर्फ 1 दिन ही आ सकता था, परंतु हमें लगातार हियाव बांधकर आने के लिए कहा गया है। मित्रों, मसीह जो हमारा महापुरोहित है, वो अपने पवित्र लहू और अपनी ही मध्यस्थता के सुगंधित धूप को स्वर्ग में ले गया और आज वह पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। मित्रों, हारून के अपने और अपने परिवार के लिए जाने के बाद उसे लोगों के लिए महापवित्र स्थान में जाना था। हम लय व्यवस्था की पुस्तक 16 अध्याय उसके 15 से 19 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, फिर वह उस पापबलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था ठीक वैसा ही वह बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के, और वह इसराइलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे, और मिलाप वाला तंबू जो उनके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है उसके लिए भी वह वैसा ही करे। और जब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब जब तक वह अपने और अपने घराने और इसराइल की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर न निकले, तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में न रहे। फिर यह निकलकर उस वेदी के पास जो यहोवा के सामने है जाए और उसके लिए प्रायश्चित करे, अर्थात बछड़े के लोहू और बकरे के लोहू दोनों में से कुछ लेकर उस वेदी के चारों कोनों के सींगों पर लगाए और उस लोहू में से कुछ अपनी उंगली के द्वारा 7 बार उस पर छिड़क कर उसे इसराइलों की भांति भांति की अशुद्धता छुड़ा कर शुद्ध और पवित्र करे। मित्रों, अब यहाँ पर हारून अपने और अपने परिवार के लिए ही नहीं, परंतु इसराइल की संतान के लिए अंदर जाता है। यह सब कुछ उनके अपराध और उनके अशुद्धता के कारण किया गया। हारून के लिए जैसे बैल की बलि की जाती थी, उसी प्रकार बकरे की बलि करने की ही एक ही विधि थी। वह पहले के समान महापवित्र स्थान में जाता है, परंतु अब प्रायश्चित स्वयं ही पवित्र स्थान को ढक देता है। यह इसराइलियों के दूषण के कारण हुआ। यहां तक कि पीतल की वेदी को भी लहू लगाना आवश्यक था, क्योंकि यही पर इसराइली के पापियों की स्वीकृति और प्रायश्चित किया जाता था। यह लोगों के पापों के कारण दूषित हो गया था। मित्रों, यह सब कुछ हमें उसका स्मरण दिलाने के लिए है जो हमारे लिए क्रूस पर मरा। यह क्रूस नहीं है जो महत्वपूर्ण है, परंतु महत्वपूर्ण वह है जो क्रूस पर मरा। पहला पत्रस की पत्री एक अध्याय उसके 18 और 19 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं से नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। मित्रों, ये सभी अनुष्ठान धर्म विधि बैल और बकरों की लहू की अपर्याप्तता को प्रकट करते हैं। इब्रानियों की पत्री उसके 9 अध्याय और उसके 23 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इनके द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा। मैं विश्वास करता हूं कि स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह ने साक्षात रूप से लहू अर्पित किया जिसे उसने तंबू के महापवित्र स्थान में चढ़ाया जो एक प्रतिरूप था, और उसने महापवित्र स्थान में उसे सहा। अब मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो लहू के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं और इस प्रकार के शाब्दिक व्याख्या को वे अशोभित कहते हैं। आप इस बात को पाएंगे कि प्रेरित पत्रस इसे यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू कहता है, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के सिंहासन के पास मसीह का लहू होगा जो हमें अनंत काल से अनंत काल तक स्मरण दिलाता रहेगा कि उद्धार एक बहुमूल्य कीमत देकर खरीदा गया है। मित्रों, मसीह ने अपने लहू को क्रूस पर बहा दिया और तब उसने आपके और मेरे पापों के लिए लहू को प्रस्तुत किया। हम सब मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। आइए अब हम देखें लोगों की तैयारी। लय व्यवस्था की पुस्तक 16 अध्याय और उसके 20 से 22 पद में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, लिखा है, और जब वह पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके तब जीवित बकरे को आगे ले आए, और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इसराइलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों निदान उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे, और वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निराले देश में उठा ले जाएगा, इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। मित्रों, इस दिन में उच्च महापुरोहित ने अकेले ही सब कार्य विधि को किया है। हारून ने प्रभु के बकरे का लहू छिड़का उस दया के सिंहासन पर, और अब वह अपने लहूलुहान हाथ को एक जीवित बकरा के सिर पर रखता है और इसराइल के पापों को स्वीकार करता है। यह निश्चित रूप से घृणित पापों की सूची थी, परंतु वह उस सूची के नीचे तक नहीं गया। बकरा के सिर पर हाथ रखना इस बात को दर्शाता है कि अब इसराइल का पाप बकरे पर है। मसीह के बारे में यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय उसके 6 पद में कहा गया है, परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। दूसरा क्रंथियों की पत्री 5 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। एम्ब्रोस ने इस विषय पर कहा, चोर अर्थात डाकू जानता था कि मसीह के शरीर के घाव उसके शरीर के घाव नहीं थे, परंतु वह डाकू के थे। मित्रों, इसके पश्चात हारून ने बकरे को उस मनुष्य के हाथ में दे दिया जिसकी उसमें कोई भी व्यक्तिगत रुचि नहीं थी, और इसराइली कुछ कुछ अंतर पर खड़े रहते थे ताकि रुक कर देखें कि काम हो गया या नहीं, और अंत में वह जीवित बकरा जंगल में गायब हो जाता है जो कभी फिर नहीं दिखता और ना मिलता है। यह समाचार स्थान से स्थान तक पहुंचा कि बकरा चला गया, और मंदिर में भी यह समाचार कुछ समय के बाद पहुंचा। मित्रों, जिस प्रकार से यह समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है अर्थात पहुंच गया, उसी तरह मसीह का शुभ समाचार जिसने हमारे पापों को ले लिया, मत्ती मरकुस लूका और यहोना को यह समाचार मिला, फिर प्रेरित पौलुस को, तब प्रथम कलीसिया के अगुए, और अंत में मुझे और आपको यह समाचार पहुंचा है। मसीह ने हमारे पापों को सही और पूरी रीति से हमसे दूर कर दिया है। छोड़े गए बकरे के विषय में पवित्र शास्त्र के कई हिस्से उदाहरण देते हैं। भजन संहिता 103 उसके 12 में हम पढ़ते हैं, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। यशायाह नबी की पुस्तक 38 अध्याय उसके 17 में लिखा है, देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गढ़े से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। यशायाह 44 उसके 22 में लिखा है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है, मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यर्मिया नबी की पुस्तक 50 अध्याय उसके 20 में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इसराइल का अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा और यहूदा के पाप खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊं उनके पाप भी क्षमा करूंगा। और यर्मिया 31 उसके 34 पद में हम पढ़ते हैं, और तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर कभी स्मरण न करूंगा। मित्रों, आज मसीहियों के लिए प्रायश्चित के महान दिन का क्या मतलब है? यह हम सबों के लिए भी एक पवित्र दिन है, जब महापुरोहित वहां अपना खून से सने हुए हाथ बकरे के सिर पर रखते हैं। तो मैं अपने प्रभु के बारे में सोचता हूं जो क्रूस पर था, जिसे यूहन्ना ने चिन्हित किया। यूहन्ना 1 अध्याय उसके 29 पद में हम पाते हैं, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 7 में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। डीन ला ने इसके विषय में बहुत अच्छा कहा है, विश्वास हमारे पापों को स्थानांतरित करता है और मसीह उन्हें दूर करता है और परमेश्वर उन्हें भूलता है। आगे हम लय व्यवस्था की पुस्तक 16 अध्याय उसके 23 और 24 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तब हारून मिलाप वाले तंबू में आए और जिस सनी के वस्त्रों को पहने हुए उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया था उन्हें उतार कर वहीं पर रख दे। फिर वह किसी पवित्र स्थान में जल से स्नान कर अपने निज वस्त्र पहन ले और बाहर जाकर अपने होम बलि और साधारण जनता के होम बलि को चढ़ाकर अपने और जनता के लिए प्रायश्चित करें। मित्रों, प्रायश्चित के महान दिन की धर्म विधि अब पूर्ण हो चुकी है। मैं बिना अनादर किए कहना चाहता हूं कि हारून के लिए अब सिर्फ धोने का काम बाकी रह गया था। यह मसीह में कोई भी प्रतिपक्ष नहीं पाता है। जब उसका कार्य समाप्त हो गया तो वह परमेश्वर की दाहिने हाथ जा बैठा, परंतु हारून अगले वर्ष तक पवित्र स्थान में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर पाया। परंतु हमारा प्रभु पिता की उपस्थिति में बैठता है, क्योंकि अब उसमें कोई भी पाप का दोष नहीं है। फिर भी उसने सब पापों को क्रूस पर उठा लिया। मित्रों, पद 25 कहता है कि पाप बलि की चर्बी अग्नि बलि की जैसी मानी जाती थी, यह मसीह के व्यक्तित्व की रक्षा करती है, जबकि वह हमारे लिए पाप ठहराया गया अर्थात बनाया गया। हम लय व्यवस्था की पुस्तक 16 अध्याय उसके 26 से 28 पद में पढ़ते हैं, और जो मनुष्य बकरे को अजाजेल के लिए छोड़कर आए वह भी अपने वस्त्रों को धोए और जल में स्नान करे और तब छावनी में प्रवेश करे, और पाप बलि का बछड़ा और पाप बलि का बकरा भी जिनका लहू पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने के लिए पहुंचाया जाए वे दोनों छावनी से बाहर पहुंचाया जाए और उनका चमड़ा मांस और गोबर आग में जला दिया जाए, और जो उनको जलाए वह अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे और इसके बाद वह छावनी में प्रवेश करने पाए। मित्रों, हम देखते हैं कि जो व्यक्ति बकरे को लेकर जंगल में गया था वह उस जीवित बकरे के साथ संपर्क में आने के कारण दूषित हो गया और उसे आवश्यक है कि वह अपने वस्त्रों को धोए और स्नान करे। बैल और बकरे की लोथ को बिना किसी दल के लिया और जला दिया गया, और जिन लोगों ने इस कार्य को किया उन्हें अपने को धोने की आवश्यकता थी। मित्रों, आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर इन लोगों को इस सत्य के साथ प्रभावित कर रहे थे कि वे पापी थे, एक खोए हुए पापी। वह उन्हें दिखा रहे हैं कि वह पवित्र हैं और वे पापी हैं, जो परमेश्वर से उन्हें अलग करता है। मित्रों, हम पाप के द्वारा परमेश्वर से अलग किए जाते हैं, परंतु मसीह हमारे लिए मरा। जब उसने पवित्र स्थान में अपने ही लहू के साथ प्रवेश किया तो उसने हमारे सब पापों को हमसे दूर कर दिया, क्योंकि हम लय व्यवस्था की पुस्तक 16 अध्याय उसके 29 से 34 पद में पढ़ते हैं, और तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी कि सातवें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस दिन कोई चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का कामकाज न करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा, और तुम अपने पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। यह तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे, और तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुख देना। यह सदा की विधि है, और जिसका अपने पिता के स्थान पर याजक पद के लिए अभिषेक और संस्कार किया जाए, वह याजक प्रायश्चित किया करे, अर्थात वह शनि के पवित्र वस्त्रों को पहनकर पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित करे, और याजकों के और मंडली के सब लोगों के लिए भी प्रायश्चित करे। और यह तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इसराइलियों के लिए प्रतिवर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी हारून ने किया। मित्रों, प्रायश्चित का दिन ही एक ऐसा दिन है जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों को शोक और उपवास करने के लिए दिया। इस दिन आप किसी को शुभ यौम किपोर या प्रसन्नचित यौम किपोर नहीं कहते हैं, क्योंकि इस दिन को मनाने का यह एक तरीका नहीं था। यही वह दिन था जिसमें पाप के कारण आत्मा को कष्ट पहुंचता था, यह पाप के लिए शोक करना था, और यही पुराने नियम में उपवास का आधार भी है। मित्रों, इस दिन का पालन करना था जब तक कि स्थायी और अनंत बलिदान पाप के लिए नहीं आ गया। यह मसीह यीशु के द्वारा उसकी मृत्यु में पूरा हो गया। मित्रों, यहाँ पर हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आपने इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ उठाया होगा। कृपया प्रभु के वचन को सुनते रहें और अपने जीवन को उसकी निकटता में लाएं, उसे अपने जीवन की सारी बातें बताएं और उसे अपने जीवन में आमंत्रित करें। वह आपको आपके पापों से छुटकारा देंगे। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
चारों तरफ है आफत मुसीबत, कितनी बुरी है दुनिया की हालत।
चारों तरफ है आफत मुसीबत, कितनी बुरी है दुनिया की हालत।
चारों तरफ है आफत मुसीबत, कितनी बुरी है दुनिया की हालत।
चारों तरफ है आफत मुसीबत।
कितनी बुरी है दुनिया की हालत,
जो हो गए बेजान